बोला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर दो यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा इति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी हम चौदहवीं पुस्तक देख रहे हैं, उसमें वही चारित्र मुनि के उपशमना नाम का चौदहवा अर्थाधिकार चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 8। यहाँ ये जो मूल गाथा सूत्र है, अब उसका अर्थ, उसकी विभाषा चल रही है। तो पहले हमने देखा था कि उपशमना दो प्रकार की है, कर्णोपशमना और अकर्णोपशमना। जो अकर्णोपशमना है वो दो प्रकार की है, या उसके दो नाम है। अकर्णोपशमना के दो नाम है, अकर्णोपशमना और अनुदीर्ण उपशमना। अनुदीर्ण यानी उदय में नहीं आना, उसी को उपशमना कहें, वो है अकर्णोपशमना। अब जो कर्णोपशमना है वह भी दो प्रकार की है, तो उसमें कहा था देश कर्णोपशमना और सर्व कर्णोपशमना। उसके अलग अलग तीन पद्धति से अर्थ किए थे। कर्णों में कुछ कर्णों की उपशमना होना, उसको कहा देश कर्णोपशमना, या उपशमना करते हुए थोड़े परमाणु की उपशमना हुई, वो भी एक अर्थ किया था। या तीसरा भी जो अर्थ किया था कि उनके अपने रूप से उपशमना हो गई है, ये बात हमने 5 नंबर की पृष्ठ 4 और 5 में देखे थे कि देश कर्णोपशमना किसको कहना है। डायरेक्ट उसके हम विशेषार्थ देख रहे हैं 6 पृष्ठ पर। तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना, निधत्य और निकासना, ये जो करण है वो करण रुक जाते हैं, वो करण अभी नहीं रहते, उसी को देश कर्णोपशमना कहते, बाकी करण चल रहे। दूसरा अर्थ किया था नपुसक वेद का उपशम करते समय पूरा उपशम नहीं हुआ तब तक उसको देश कर्णोपशमना कहा था। और तीसरा कि एक नपुसक वेद का उपशम हुआ है, अभी अन्य चारित्र मुनि के उपशम से नहीं हुए हैं, इसलिए भी उसको देश उपशमना कहा, देश कर्णोपशमना। यानी 7 पेज पर सर्व कर्णोपशमना का अर्थ देखे थे कि सब कर्णों की उपशमना। जब दर्शन मुनि की और चारित्र मुनि की उपशमना होती है तो सभी कर्ण रुक जाते हैं, तो उसको सर्व कर्णोपशमना कहा था। ये स्पेशली चारित्र मुनि में घटित होता है, क्योंकि दर्शन मुनि में फिर भी वो संक्रमण आदि बातें चलती हैं। उसके बाद 8 पृष्ठ पर हमने देखे थे कि देश कर्णोपशमना के दो नाम। पहले हमने अकर्णोपशमना के दो नाम देखे थे, कौन से?
अनुदीर्ण
उपशमना भी उसको कहा था। एक तो कर्णोपशमना और एक अकर्णोपशमना। अकर्णोपशमना के दो नाम, अकर्णोपशमना और अनुदीर्ण उपशमना। अनुदीर्ण ने उदय में नहीं आना, उसी को हम कहेंगे कुछ परमाणु उदय में आ रहे हैं, बाकी क्या है, बाकी ऊपर पड़े हैं, उसको कहेंगे अनुदीर्ण, उदय में नहीं आना, वही उसकी उपशमना है। तो प्रत्येक कर्म का उदय चल रहा है, तो एक निषेक उदय में है तो बाकी सत्ता में पड़े हैं, तो उसको तो अनुदीर्ण उपशमना ही कहेंगे। हाँ तभी है, तो आठों कर्मों में वो घटित होगा, वही उसी को अकर्ण उपशमना कहो या उसी को अनुदीर्ण उपशमना कहो, एक ही बात। अब देश कर्णोपशमना की भी दो नाम है, एक तो देश कर्णोपशमना तो जो हमने देखा, और दूसरा नाम है अप्रशस्त उपशमना। तो उसके बाद देख के फिर हम आगे और बढ़ेंगे। आठ पृष्ठ पर जो 18 नंबर का पॉइंट है सूत्र के नीचे, यथा संसार के योग्य अप्रशस्त परिणाम निमित्तक होने से यह अप्रशस्त उपशमना कही जाती है। यह संसार प्रायोग्य अप्रशस्त परिणाम निमित्तक होती है, यह सिद्ध नहीं है, क्योंकि अति तीव्र संक्लेश के कारण अप्रशस्त उपशमना निधत्त और निकाचना करणों की प्रवृत्ति देखी जाती है। पूर्व करण के अंत तक यह अप्रशस्त उपशमना निधत्त और निकाचितपना बना रहता है, पूरे कर्म परमाणु में नहीं, कुछ कर्म परमाणु में। और जो क्षपक्षेणी कहो या विशुद्ध परिणामों के द्वारा इन कर्णों की विक्षिप्ति होती है, कर्ण बंद हो जाते हैं। ये तो बाद में तो चलेगा ना, निधत्ति निकाचित रुक गए हैं। आठवें के अंत तक है, नौवे के पहले समय से है ही नहीं है। तो अनिवृत्तिकरण के पहले समय से ही वो रुक जाती, मिट जाती है, और उसकी विच्छित हो जाती है। यानी कुछ परमाणुओं में ही ये बाधे बनती है, क्योंकि कुछ तो उदय रूप चल ही रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का सूत्र यहाँ देखेंगे नीचे लास्ट वाला। ऐसा कम्म पयडीसु, यह कर्म प्रकृति प्रावृत में अवलोकनीय है। पहले जो हमने प्रशस्त अकर्णोपशमना देखी थी, अनुदीर्ण उपशमना, तीन नंबर के पेज पर, वहां कहा था कि यह कर्म प्रवाद पूर्व में प्ररूपित है, और अब ये बता रहे कर्म प्रकृति प्रावृत में अवलोकनीय। प्रावृत उसका एक चैप्टर हो गया, वहां तो पूरे पूर्व की बात थी। तो कहते दूसरे पूर्व की, दूसरे पूर्व का नाम बता दो भाई। दूसरे पूर्व अग्रायन, पहले का नाम उत्पाद है, दूसरे का अग्रायन। दूसरे पूर्व की पांचवी वस्तु का जो चौथा प्रावृत नामक अधिकार है, एक एक पूर्व में अनेक वस्तु नामक अधिकार होते हैं, एक एक वस्तु में जो प्रावृत होते हैं, हमने देखा ना प्रावृत 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 वगैरह बहुत सारे, उसकी कर्म प्रकृति संज्ञा है। दूसरे पर दूसरा पूर्व उसका पांचवा वस्तु, पांचवी वस्तु,
चौथा प्रावृत,
पहले में 10 और दूसरे में 14, उसमें से पांचवी वस्तु उसका चौथा प्रावृत। हाँ, तो वो प्रावृत उसका नाम क्या है? कर्म प्रकृति, उसको कर्म प्रकृति प्रावृत कहेंगे। तो कर्म प्रकृति प्रावृत ये चौथा प्रावृत है, किसमें से? पांचवी वस्तु के,
दूसरे पूर्व की।
और वो कौन सी, किसकी पांचवी वस्तु है? तो कहते दूसरे पूर्व की पांचवी वस्तु। तो कहते यह देश कर्णोपशमना जाननी चाहिए, क्योंकि वहाँ इसका विस्तार के साथ प्रबंध रूप से प्ररूपण किया गया है। ये कहाँ से ये सब निकाला उसकी बात है, यहाँ तो बहुत बहुत ही स्थूल कथन है और वहाँ विस्तार से। शंका, कर्म प्रकृति प्रावृत एक है, उसका चूर्ण सूत्र में कम्म पयडीसु इस प्रकार बहुवचन रूप से निर्देश कैसे किया है? उसका समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि कर्म प्रकृति प्रावृत एक है तो भी उसका कृति वेदना आदि अवांतर अधिकारों के भेदों की विवक्षा में बहुवचन निर्देश करने में कोई विरोध नहीं आता। हमने कृति वेदना वगैरह पढ़े है धवला में। हाँ, अब सर्वकर्णोपशामना के संज्ञा भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हर एक के दो दो नाम देखे हमने। अकर्णोपशामना का दूसरा नाम अनुदीर्ण उपशामना, देश कर्णोपशामना का दूसरा नाम अप्रशस्त उपशामना। अब ये सर्वकर्णोपशामना का दूसरा नाम बताएंगे। जा सा सर्व कर्णो सामना नौ पेज तिस्से भी दुवे नामानी सर्व कर्णो व सामनास्ती भी पसत्थ कर्णो व सामनास्ती भी। जो वह सर्व कर्णोपशामना है उसके दो नाम है, सर्व कर्णोपशामना और प्रशस्त कर्णोपशामना। यहाँ सर्व कर्णोपशामना इस संज्ञा का पहले ही व्याख्यान करा है तथा प्रशस्त कर्णोपशामना यह संज्ञा भी प्रसिद्ध अर्थ वाली ही है, क्योंकि यह प्रशस्त कर्ण परिणामों के निमित्त से होती है। इसलिए उस हाँ दर्शन मोहनी में हो हाँ और चारित्र मोहनी तभी वो प्रशस्त उपशामना होती है। क्या सब हाँ सर्वोपशामना होगी ना वहाँ पर बिल्कुल
चारित्र मुख्य
अपेक्षा दो ही जगह नहीं, वो इसे प्रथम उपशम द्वितीय उपशम भेद करेंगे तो दो बार हो जाएगी, पर हमने उपशम समय तो कहने से दोनों इंक्लूड हो गए, दोनों ही प्रशस्त उपशम है चारित्र मुनि की उपशम यानी उपशम के दो भेद करेंगे तो तीन हो गए। उपशम सम्यक होके प्रथमोपशम द्वितीयोपशम भेद करेंगे तो दो अलग अलग हो गए, दोनों को इंक्लूड करके हम औपशमिक सम्यक तो कह ही सकते हैं। तो पहले तो बताया था अप्रशस्त करण परिणामों के यानी परिणाम निमित्तक होते हैं, इसलिए उसको अप्रशस्त उपशामना कही थी और यहाँ इसको प्रशस्त उपशामना करण उपशामना कहते हैं। इसलिए उसकी उक्त संज्ञा की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है, यानी संज्ञा सिद्ध होती है। अब इस प्रकार उपशामना के अनेक भेद संभव होने पर उनमें से प्रकरण प्राप्त कौन है, यानी किसका यहाँ प्रकरण चलेगा, ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एदाय एत्थ पयदम यही यहाँ प्रकृत है, यही यानी अभी जो दूसरी बार बताई सर्वोपशामना, पूर्व में जो सर्वोपशामना का कथन कर आए हैं, यहाँ कषायों की उपशामना की प्ररूपणा के अवसर पर वही प्रकृत है अर्थात अधिकृत है ऐसा यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि अकर्णोपशामना और देश कर्णोपशामना का यहाँ प्रयोजन नहीं है। अकर्णोपशामना किसको कहता है, अनुदीर्ण उपशामना, उसमें तो कोई जीवों के भावों का कोई निमित्त नहीं बन रहा था। इस प्रकार अनुदीर्ण उपशामना, अनुदीर्ण ने उदय रूप नहीं है, कुछ परमाणु ऊपर पड़े हैं तो उसमें कुछ जीवों के भावों का निमित्त तो कुछ नहीं, बस उसके अभी पड़े हैं ऊपर। इस प्रकार उपशामना कितने प्रकार की है, यही था ना पहला प्रश्न, पहले सूत्र में पूछा था उन्होंने। वो सामना कदीरी उपशामना कितने प्रकार की है, ये पहले सूत्र का पहला चरण या पाद ये था कि उपशामना कितने प्रकार की है। प्रशस्त उपशामना अप्रशस्त सब में चलेगी, अनुदीर्ण उपशामना भी सब में चलेगी, नहीं समझ जो उदय में नहीं आ रहे उसको उपशमना कह दिया ना यहाँ पर। हाँ तो उसमें को जीवों के भावों का निमित्त नहीं है, जो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, ये अप्रशस्त प्रशस्त हो, ये तो इसके भेद हो गए। कर्णोपशमना के हुए, कर्णोपशमना के दो भेद, देश कर्णोपशमना और सर्व कर्णोपशमना। देश कर्णोपशमना को ही अप्रशस्त सॉरी अप्रशस्त उपशमना कही, और सर्वोपशमना को प्रशस्त उपशमना कही, और वो पहले वाले वो अनुदीर्ण उपशमना थी। यानी तीन अलग अलग भेद। तो कहते उपशमना कितने प्रकार की है, इस गाथा के प्रथम अवयव की अर्थ प्ररूपणा समाप्त हुई। पहले गाथा के पहला जो पाद लिया उन्होंने, एक सेंटेंस लिखी, उसके बाद उसका एक अवयव बताया। अब प्रथम गाथा के दूसरे अवयव की अर्थ प्ररूपणा का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। उवसामो कस्स कस्स कम्मस्यति विहासा, उपशम किस किस कर्म का होता है, इस पद की विभाषा करते हैं। परंतु यहाँ अभी सर्वोपशमना का प्रकरण लिया है उन्होंने, पहले वाले तो सब में घटित हो गए, अब यहाँ यह सूत्र सुगम है, देखेंगे आगे। तम जहाँ वह जैसे, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। मोहनीय वज्जानम कम्माणम नत्थी उवसामो, उवसामो चाहिए कि उवसामो चाहिए, उवसामो जरा पीछे देख लेते हैं, उवसामो के उवसामो, उवसामो ही है ना, हाँ सब जगह उवसामो, ठीक है, उवसामना के उवसामो लिया, जिसको हम उपशम कहेंगे, बराबर एक वचन लिया, देखने की जरूरत नहीं है। मोहनीय वज्जानम कम्माणम नत्थी उवसामो, मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का उपशम नहीं होता। जब ऐसा कह रहे हैं तो ये हमारा प्रशस्त उपशम का प्रकरण चल रहा है, पहले उन्होंने बताया था, अब यहाँ किसकी सर्वोपशमना की बात, जिसको प्रशस्त उपशमना कहते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ कौन सी किसकी चर्चा चलेगी, प्रशस्त उपशमना को या सर्वोपशमना, वो किस में होती है,
मोनी,
तो मोहनी को छोड़कर किसी में नहीं होती, यानी अकेले मोहनी में होती है, क्योंकि स्वभाव से ही शेष कर्मों का उपशम नहीं होता। क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मों के उपशम रूप परिणाम की संभावना नहीं पाई जाती, उपशम हो जाए तो कोई उदय ही नहीं है, तो केवल ज्ञान हो जावे, तो उसकी संभावना ही नहीं है। समाधान, शंका, पहले शंका, उन कर्मों की अकर्णोपशमना और देश कर्णोपशमना तो होती है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रशस्त कर्णोपशमना यहाँ अधिकृत है, पहले ही बता चुके थे, यह प्रशस्त उपशमना की बात है। वो अनुदीर्ण उपशमना और अप्रशस्त उपशमना होती, उसकी तो उसका तो कोई निषेध नहीं है, विषय किसका चल रहा है, और हाँ सर्व कर्णोपशमना वो किस में होती है और किस में नहीं होती, मात्र मोहनी में होती। इसलिए शेष कर्मों का निराकरण करके मोहनीय कर्म का ही प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशम होता है। ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यदि हम वो पहले वाली कंडीशन नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ सर्वकर्णोपशमना प्रकृत है, और डायरेक्ट इस सूत्र को पढ़ेंगे तो क्या अर्थ निकालेंगे,
बाकी के कर्मों को भी
किसी में होती ही नहीं, तो क्या ये सर्वथा सही, यहाँ तो मात्र प्रशस्त उपशमना की बात चल रही है, और फिर लिखेंगे ये जयदेवला में ऐसा लिखा है, परंतु रेफरेंस उसका उसके आगे पीछे देखकर उसके उसको कोटेशन करना है हमको। उसमें भी प्रकृत में अनधिकृत दर्शन मोहनी के निषेध द्वारा चारित्र मोहनी का ही उपशम होता है, यहाँ किसकी बात है, चारित्र मुनि का उपशम अधिकृत है यहाँ पर, उसी में वो सर्वोपशम ना होगी, क्योंकि वह यहाँ अधिकृत है ऐसा ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। अकेले चारित्र मुनि को यहाँ क्यों लेना, पहले तो पहले बताया मुनि में ही होता है, अन्य में नहीं होता, अब उसमें भी और स्पेसिफिक बताएंगे। तो कहते दंशन मुनि से भी नथी वह सामू, यहाँ दर्शन मुनि का भी उपशम नहीं होता। यहाँ इन्हें ये उपशम श्रेणी की बात चल रही थी, चारित्र मुनि के उपशम नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं। तो कहते दर्शन मुनि का क्यों उपशम नहीं होता यहाँ पर, तो कहते क्योंकि वह पहले ही उपशांत अथवा क्षीण हो गई। इसका अर्थ बताओ नितिन भाई। क्यों वो कृष्टि वगैरह चारित्र मुनि की थी, बोलो। हाँ, यानी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला कौन है, या तो द्वितीय उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि, ये उसका अर्थ है। क्योंकि वह पहले ही, वह ने दर्शन मुनि पहले ही उपशांत हो गया है, यानी वो द्वितीय उपशम या क्षीण हो गया, क्षायिक समय दृष्टि, इसलिए यहाँ उसका अधिकार नहीं है। अतः दर्शन मुनि का उपशम संभव होने पर भी वह यहाँ विवक्षित नहीं, यहाँ की बात है, यही सूत्र का भावार्थ है। यानी प्रथमोपशम, यह प्रथमोपशम नहीं, यह प्रशस्त उपशम दर्शन मुनि में होने पर भी, संभव होने पर भी यहाँ उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ चारित्र मुनि के उपशम की बात चल रही है। ख्याल में आई बात। आगे कहते हैं अनंतानुबंधिनम पि नथ्यु वसामु, अनंतानुबंधियों का भी उपशम नहीं होता। यहाँ तो बताया मुनि का होता है, अन्य का नहीं होता। फिर कहेंगे दर्शन मुनि चारित्र मुनि दोनों का होता है, परंतु यहाँ दर्शन मुनि का अधिकार नहीं है, तो कहते हैं चारित्र मुनि का प्रशस्त उपशम होता है। परंतु चारित्र मुनि तो सभी, अनंतानुबंधी भी चारित्र मुनि है, तो उनको कहना पड़ा कि अनंतानुबंधी में तो ये उपशम प्रशस्त उपशम होता ही नहीं। यहाँ प्रशस्त नाम ही नहीं लेंगे, यहाँ उपशम नहीं होता इतना ही कहेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ प्रशस्त उपशम की ही बात चलेगी, तो बार बार प्रशस्त प्रशस्त कहने की या सर्वकर्णोपशम की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता चुके। तो कहते चारित्र मुनि में यह प्रशस्त उपशम होता है, परंतु अनंतानुबंधी में नहीं होता। तो अनंतानुबंधियों का भी उपशम नहीं होता। अब यहाँ क्यों नहीं होता, तो उसकी सत्ता नहीं, ऐसा कहेंगे द्वितीय उपशम करके आया है, तो उसने तो द्वितीय विषयोजना करके आया है, यक्षायिक करके उसकी तो सत्ता ही नहीं है, नहीं उसने भी विषयोजना पूर्वक उसका बाद में तो परमानेंट क्षय कर दिया उसका, क्योंकि उनकी पहले ही विषयोजना करके उपशम श्रेणी पर आरोहण करना संभव है, इसलिए विषयोजना रूप अनंतानुबंधी प्रकृतियों की उपशमना संभव नहीं है, यह बात स्वयं सिद्ध है। आप कहेंगे यहाँ तो ठीक है, परंतु जब दर्शन मुनि की उपशमना होती है तब तो अनंतानुबंधी का भी प्रशस्त उपशम होता होगा।
नहीं
होता, वहाँ तो भले वो सत्ता में पड़ा है, उसका तो अप्रशस्त उपशम ही होता है। इन्हें अंतर करके उपशम होने का कार्य अनंतानुबंधी में नहीं होता, वो मुनि की है, चारित्र मुनि की प्रकृति होने पर भी उसमें वो कार्य नहीं होता। तो ये प्रशस्त उपशम का कार्य किसमें होता है, दर्शन मुनि के तीनों में ही हो सकता है, क्योंकि जब द्वितीय उपशम होते हैं तो तीनों को एक साथ उपशमित कर देता है। चारित्र मुनि के अन्य 21 में होता है, चारित्र मुनि के 21 में होता है, दर्शन मुनि के तीनों में होता है, अनंतानुबंधी को छोड़कर। अब आगे पढ़ेंगे
कि दर्शन
मतलब मुनि का जो किसी प्रकार से होता है प्रशस्त उपशम होता है।
हाँ हम पूछेंगे आपको। हाँ
उत्तर अगर मैं दूँ,
हाँ
ये 22 या 24 मुनि होता है, ये चारित्र मुनि होता है, ये मुनि चार होता है, या
मैं जीरो को ले लूँ, दो जीरो को ले लूँ, तो फिर दो को भी ले सकते हैं।
दो को लिया ना,
दर्शन मुनि के एक को ले लो, दो को ले लो, या तीन को ले लो, दो को भी ले सकते हैं। जैसे उद्वेलना करते करते दो ही प्रकृति शेष रही, 27 की सत्ता वाला। ख्याल में आई बात क्या कहे? हाँ, चार आनंद आनंदित को छोड़ दो, बाकी कॉम्बिनेशन जो करना है वो करो।
नहीं, पृथक तो 22 पे नहीं होगा ना, 21 पे भी नहीं होगा। चार अनंतानुबंधी तब अनंतानुबंधी का तो प्रश्न
नहीं, पर एक साथ 22 का कहाँ होता है वापस
अनंतानुबंधी का?
किनमें हो सकता है? हाँ, तो जब हम किनमें हो सकता है तो अकेले 24 का नाम ले लो ना। सीधा 24 ही बोलना है कि 24 में हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग करेंगे तो उसके तो स्थान, हाँ स्थान हो गए उसके।
पर दर्शन मोदी ने स्वरूप सामना बताई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण वो चल रहा है।
हाँ, तो वो दो छोड़कर होती है ऐसा कहीं है।
स्वरूप सामना की अपेक्षा वो दो
उसमें आठ चरणों की उपसामना होती है। संक्रमण चल रहा है, संक्रमण ऑपरेशन छोड़कर बाकी सब उपशमित हो गए। देखो आगे पढ़ेंगे अभी। बारस कसाय नवनो कसाय वेदनीयाणम उव सामु, बाहर कषाय और नव नौ कषाय वेदनी का उपशम होता है। अब यहाँ की बात चल रही है अपनी उपशम श्रेणी की, और हम उपशम श्रेणी का आधा वर्णन पढ़कर आए हैं तेरी पुस्तक में, 11वें गुणस्थान में पहुंचे थे ना। अभी फिर उसी की बात और गाथा सूत्रों के आधार से देख रहे हैं। बाहर कषाय और नव नौ कषाय वेदनी का उपशम होता है, क्योंकि उपशम श्रेणी में इन कर्मों का सर्वोपशम स्फुट रूप से उपलब्ध होता है। स्फुट यानी स्पष्ट रूप से। इस प्रकार किस किस कर्म का उपशम होता है, गाथा सूत्र के इस दूसरे अवयव के अर्थ का विशेष विवरण समाप्त हुआ। यहाँ जो गाथा सूत्र बताए थे वो चारित्र मोह के उपशम के लिए ये गाथा सूत्र आया है। दर्शन मोनी की अगर बात करते तो वहाँ पर किन किन का उपशम होता है ऐसे पूछते, तो फिर वहाँ हम मिथ्यात्व का या दो या तीन का नाम ले लेते। अब गाथा के उत्तरार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए, गाथा के पहली लाइन में दो अवयव बताए, उपशम कितने प्रकार का होता है और दूसरा अवयव है उपशम किस किस कर्मों का होता है। अब उसके उत्तरार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान करेंगे तो सूत्र प्रबंध को कहते हैं, कम कमम वसंतम अणुवसंतम च कम कमति विहासा। कौन कर्म उपशांत होते हैं और कौन कर्म अनुपशांत रहते हैं इसकी विभाषा की जाती है। यह सूत्र सुगम है। तम जा वह जैसे, यह पृच्छा सूत्र भी सुगम है। पुरी से वेदेन उवत्थिदस पढ़मम ताव नौ से वेदो उव समेदी शेषाणी कम्माणी अणुव समाणी। पुरुष वेद से उपशम श्रेणी पर चले हुए जीव के सबसे पहले नपुसक वेद का उपशम होता है, उस समय शेष कर्म अनुपशांत रहते हैं। अभी उनका उपशांत नहीं, उपशम शुरू नहीं हुआ है, अनुपशांत है। शंका, यहाँ उपशांत और अनुपशांत होने वाले कर्मों की प्ररूपणा किस लिए स्वीकार की गई है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कषायों और नौ कषायों की अक्रम से उपशामना के निषेध द्वारा क्रम से उपशम को दिखलाने के लिए यह प्ररूपणा स्वीकार की गई है। यानी वो एट ए टाइम सबकी उपशामना नहीं होती, क्रम से होती है। क्या दर्शन मुनि भी ऐसा क्रम होता है जो सादी मिथ्या दृष्टि है और प्रथम उपशम करेगा तो तीनों एक साथ हो जाएगी, क्या क्रम क्रम से होगी? एक साथ। चारित्र मुनि में क्या हो रहा है? क्रम से उपशामना हो रही है। वह शंका, वह कैसे? उसका समाधान, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से श्रेणी पर चढ़कर जो उपशम करने वाला जीव है उसके सबसे पहले नपुसक वेद का ही उपशम होता है, परंतु उस समय शेष कर्म अनुपशांत रहते हैं, क्योंकि उनके उपशमन की कारणभूत विशुद्धियां अभी भी उत्पन्न नहीं हुई है। विशुद्धि कम है तो नपुसक वेद की तो उपशमना हो सकती है, इतनी विशुद्धि अन्य कर्मों की उपशमना के लिए पर्याप्त नहीं है, और बढ़ेगी तब जाके अन्य कर्मों पर उसका असर होगा। और जो कर्म अनंत गुणी विशुद्धि से उपशम भाव को प्राप्त होते हैं, उनका अनंत गुणहीन अधस्तन विशुद्धि के स्थान में उपशम का सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका निषेध है। तो सबसे अधिक विशुद्धि कौन से कर्म की उपशमना के लिए लोग जो सबसे अंत में विशुद्ध यानी उपशमित होता है, उसके लिए कितनी अनंत 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 गुणी विशुद्धि चाहिए, तब जाके लोग उपशमित हो जाएगा।
तो सबसे ज्यादा सबसे अप्रशस्त
सबसे अप्रशस्त सबसे पहले चला जाता है।
इसीलिए अब यही जा रहा हूँ ना, आप मेरे पास जा दिया
वो चिकना है बहुत। इन प्रशस्त जाने में टाइम जाता है ज्यादा, नहीं समझो
सच्ची नहीं समझो।
मिथ्या तो पहले जाता है कि लोग पहले जाता है?
मिथ्या
तो जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक पहले चले जाते हैं। अनंत अनुबंधी ज्यादा अप्रशस्त है कि वो संज्वलन ज्यादा
अप्रशस्त?
तो वो किस क्रम से गए?
पहले जाते
हैं। अभी क्रोध मान माया लोभ में लगाओ, ये क्रोध और मान तो द्वेष रूप है, वो अति अप्रशस्त है, वो तो पहले चले जाते हैं। क्रोध फिर मान फिर माया फिर लोभ, तो लोभ तो उसको अति प्रशस्त अधिक अप्रशस्त नहीं कह सकते, वो प्रशस्त वाला है। और वहाँ वाला लोभ कौन सा है? प्रशस्त लोभ ही बाकी है ना, अप्रशस्त ये ना अनंतानुबंधी वाला लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ तो पहले ही चले गए। हाँ चलो अभी आगे। तदो इत्थि वेदो वह समझे, उसके बाद स्त्रीवेद का उपशम होता है। नपुसक वेद के उपशांत हो जाने पर तदनंतर अंतर्मूर्त जाकर स्त्रीवेद का उपशम होता है, क्योंकि उस समय स्त्रीवेद की कारणभूत विशुद्धियां वहां पूरी देखी जाती। स्त्रीवेद की उपशम की कारणभूत चाहिए। तदो समणि बंधानम विशोहीनम तत्व संपूर्णत्व दंशनादो
उपशम,
उनके उपशम की कारणभूत विशुद्धियां चाहिए। वो तो समझने जैसी बात है, क्योंकि ऊपर वही बात की थी, स्त्रीवेद की कारणभूत है ना, स्त्रीवेद की उपशम की कारणभूत। वहां पूरी देखी जाती है। इसी प्रकार आगे के सूत्रों में भी कारण का निर्देश जान लेना चाहिए। ये क्रम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जहां उतनी विशुद्धि हो जाती है वहां पर उस पर्टिकुलर कर्मों का उपशम देखा जाता है। तदो सत्त नौकसाया वसा मेरी, उसके बाद सात नौकसाओं का उपशम होता है। यह सूत्र सुगम है, इतनी विशेषता है कि छह नौकसाओं का उपशम हो जाने पर तदनंतर एक समय कम दो आवली प्रमाण काल के अंतिम समय में पुरुष वेद के नवक बंध का उपशम होता है।
यानी उसका उपशम पूरा कब होता है, ऐसा अगर कोई पूछेंगे, सात नौकसाओं का तो एक साथ हुआ था, परंतु जो अंतिम एक समय कम दो आवली काल में जो बंधा था उसका तो अनुपश्चिमित रहता, किसी के एक फाली बाकी थी, किसी के दो, किसी के तीन, इस तरह से, और कोई तो पूरे समय प्रबद्ध बाकी थे जो अभी अभी बंध हुए थे। तो पुरुष वेद का उपशम कब पूर्ण होता है?
एक समय कम दो आवली कक्षा,
हाँ, अवैध अवस्था में पुरुष वेद का उदय मिट गया है। या अगर उपशम की भाषा में बोलना है तो छह नौकसाओं का उपशम पूरा हुआ और उसके एक समय कम दो आवली काल के बाद पुरुष वेद का उपशम पूर्ण हुआ, और उसी काल में संज्वलन क्रोध का वगैरह तीन क्रोध का उपशम चल रहा है। तदो तिवी हो कहो वह समधि, उसके बाद तीन क्रोधों का उपशम होता है। तदो तिवी हो मानो वह समधि, उसके बाद तीन मानों का उपशम होता है। तदो तिविहा माया वह समधि, उसके बाद तीन माया का उपशम होता है।
ये तीनों ही सूत्र सुगम है, इसके बहुत विस्तार से चर्चा कराए हम। ये नवे की ही बात चल रही है, उपशम किसका चल रहा है, डायरेक्ट उन्होंने वहां की बात कर दी। उपशम श्रेणी की बात तो आठवें में क्या होता है, अधप्रवृत्त में क्या होता है, वो तो पहले हम देख चुके। यहाँ डायरेक्ट उपशमने का कार्य कहाँ होता है, नवे का संख्यात बहुभाग बीत गया तब संख्यात्वा भाग शेष रहा, ये बाकी चर्चा यहाँ नहीं की, जब डायरेक्ट उपशमने की बात ही, कौन कौन से उपशमित होते हैं ये चर्चा चल रही। तो अंतर कर चुका, वो अंतर करने के बाद पहले समय से ये बातें शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ अंतर करना पूरा हो गया, उसके बाद सात करने एक साथ शुरू हुए थे, उसमें से उपशमकरण की यहाँ बात चल रही। उपशम किस क्रम से होता है उसकी बात चल रही। तदो तिवी हो लोहो व समाधि कित्ती वज्जो, उसके बाद कृष्टियों को छोड़कर तीन लोभों का उपशम होता है। अब जब कृष्टियों को छोड़कर, उसमें भी नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर ऐसे चले, यह सूत्र भी सुगम है। अनिवृत्ति बादर सांप्राय के अंतिम समय में कृष्टियों को छोड़कर तीन प्रकार के लोभों की सर्वोपशामना रूप पर्याय हो जाती है, यह पहले ही कहे आए हैं। किट्टीसु लोह संजलनम व समाधि, तदनंतर कृष्टिगत लोभ संजलन का उपशम होता है। ये कौन से गुणस्थान में होता है?
दसवें।
नवे में तो कृष्टि करने का कार्य हुआ था, कृष्टिकरण का काल नवे में था, कृष्टि वेदक और कृष्टि का उपशम का कार्य दसवें में हो रहा है। यह सूत्र भी गतार्थ है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में सूक्ष्म कृष्टि रूप से लोभ संज्वलन का, ये स करना बराबर, स के ऊपर बिंदी चाहिए, लोभ संज्वलन का उपशम होता है, यह पहले ही कहे आए हैं। ये उपशम होने का अंतिम समय उन्होंने यहाँ बताया, उपशम होता है ना, पूरा हो जाता है। तदो सवम मोनियम व संतम भवदी, ऐसा होने पर संपूर्ण मोनीय कर्म उपशम भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी ग्यारहवें का पहला समय कहेंगे, क्योंकि कृष्टियों के उपशमित हो जाने पर संपूर्ण मोनीय कर्म का उपशम रूप से अवस्थान देखा जाता है। यहाँ नवक बंध रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे नहीं रहेगा, आप क्या कहते हैं मालूम नहीं, क्यों नहीं रहेगा, हमेशा तो हर एक के रहते आए थे, हाँ, संक्रमण नहीं, वो अपने स्वरूप से ही उदय में आकर नष्ट हो जाता
है। नहीं, बंध तो नवे में रुक गया है ना,
बंध तो नवे में रुक गया है,
तो
और अन्यत्र नवक बंध,
हाँ,
यहाँ तो बंध ही नहीं है, और वो अपने रूप से उदय में आ रहा है। कृष्टि, जब कृष्टि का उदय है तो नया बंध नहीं है, शुरू से ही नहीं है दसवें गुणस्थान। और अन्यत्र क्या हो रहा था, बादर लोग का हमने जो प्रथम स्थिति बनी थी उसमें उच्छिष्टावली रही थी, यहाँ उच्छिष्टावली भी नहीं रहेगी और नवक बंध भी यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर बंध ही नहीं है, यानी उच्छिष्टावली का भी वो सवाल नहीं आता यहाँ पर। नवे के अंत में नवक बंध भी था जो बादर लोग रूप से था, और उच्छिष्टावली भी थी, हाँ, जो कृष्टियों के साथ उसका भी उपशम हो जाता है,
उसका कृष्टिकरण भी होता है ना,
कृष्टिकरण नहीं होगा उसका उपशम होगा। और जो उच्छिष्टावली है वो कृष्टि रूप होकर उदय में आएगी,
एक एक निशे।
हाँ, ऐसा होने पर संपूर्ण सूक्ष्म कृष्टि का, सूक्ष्म लोभ जो कहते हैं वो सूक्ष्म कृष्टि का उदय, वो स्पर्धक रूप से थे, वो सारे उपशमित हो गए, स्पर्धक, इसलिए स्पर्धक का उदय नहीं है, उपशमित है। नवक बंध जो है बादर लोभ का, वो कृष्टि के साथ उपशमित होगा, आगे उसका उदय नहीं।
वो उपशमित हो जाएगा एक समय कम द्वावधि काल में। ऐसा होने पर संपूर्ण मोहनीय कर्म उपशम भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कृष्टियों के उपशमित हो जाने पर संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम रूप से अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा प्रथम गाथा के अर्थ का व्याख्यान समाप्त करके अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथा के अर्थ का व्याख्यान करते हुए आगे के प्रबंध का कथन करते हैं। पहले हमने ये गाथा भी देखी थी, उसका रेगुलर अर्थ देख के बहुत विस्तार से उसका व्याख्यान किया था। अब डायरेक्ट गाथा के द्वारा उसका व्याख्यान करें। तो कदि भाग व सामित यदि संकमम उदीर्णाच कदि भागे इति विहासा, कितने भाग को उपशमाता है और कितने भाग का संक्रम और उदीर्णा करता है, इसकी विभाषा की जाती है। उपशमाने का जब कार्य चलता है तो उसी समय संक्रमण का भी कार्य चल रहा है और जो उदय रूप प्रकृति होगी उसकी उदीर्णा भी होगी। जैसे पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले को नपुसक वेद की उपशमना हो रही है, उसी समय उसका संक्रमण होगा ना अन्य रूप से, और बाय द टाइम उसकी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। किसमें कैसे होगी? पुरुष वेद से चढ़ रहा है, उदय किसका है? पुरुष वेद। तो उसकी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी?
उदय नहीं है,
जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होगी। वो क्रम से नीचे आएंगे, वो उस रूप से होंगे, उसकी बात नहीं हो तो संक्रमण में चले जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था जिसका उदय नहीं है उसकी पहली स्थिति आवली मात्र थी और वो तो कब की नष्ट हो गई। नपुसक वेद को उपशमाता है तो सारा ही द्रव्य उसका द्वितीय स्थिति में पड़ा है, पहले स्थिति में कुछ वहां है ही नहीं उपशमाने के लिए। तो यहाँ तो पूछा गया था, अभी उसका अर्थ हम देखेंगे। 38 नंबर का पॉइंट, पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध के साथ यह दूसरी गाथा नपुसक वेद आदि प्रकृतियों संबंधी प्रत्येक समय में उपशमित होने वाले प्रदेश पुंज का कथन करने के लिए तथा स्थिति और अनुभाग के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए तथा उसी प्रसंग से बंध को प्राप्त होने वाले, उदय को प्राप्त होने वाले, संक्रम को प्राप्त होने वाले और उपशम को प्राप्त होने वाले स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए आए हैं। यानी इसमें वो केवल इतना ही बताता था कितने भाग को उपशमाता है, संक्रम उदीर्णा करता है, तो इतना बताया तो वो बंद करता होगा तो वो भी बताएंगे कितना करता है, कब तक करता है, वो सब बातें आएगी। तो बंद करता है तो स्थिति कितनी बांधेगा, ये भी बातें उसमें आ जाएगी। इस प्रकार जिसके संबंध की प्ररूपणा कर दी गई है ऐसी इस गाथा का विशेष व्याख्यान इस समय अधिकृत है, यह इस सूत्र से जाना जाता है। तम जहां वह जैसे, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। वहां सर्वप्रथम कितने भाग को उपशमाता है गाथा के इस प्रथम पाद के अर्थ की विशेष व्याख्यान करने के लिए, व्याख्या करने के लिए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। व्याख्या करना है ने यहाँ पर हिंदी में व्याख्या स्पष्टीकरण को कहते हैं, हम मराठी में व्याख्या परिभाषा को कहते हैं, डेफिनेशन को। यहाँ व्याख्या नहीं, उसकी स्पष्टीकरण। जम कम्मम उवसामिज्यदि तम अंतोमूत्तेन उवसामिज्यदि, जस्य जम पड़म समय उवसामिज्यदि पदेशग्गम तम थोवम, विधीय समय उवसामिज्यदि पदेशग्गम असंख्यज्य गुणम एवं गंतुण चरिम समय पदेशग्गस्य असंख्यज्या भागा उवसामिज्यन्ति। आसान है ना, जिस कर्म को उपशमाया जाता है उसे अंतर्मूर्त के द्वारा उपशमाता है। एक समय में ये कार्य नहीं होता तो प्रत्येक समय में कुछ कुछ कर्म प्रदेश उपशमित होंगे, उसको कहेंगे पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, चौथी फाली। ये क्रम से असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा क्रम से उपशमित हो, और जितना हुआ है उससे भी अंतिम जो फाली है वो सबसे भी असंख्यात गुणी होगी।
असंख्यात बहुभाग होगा ना,
असंख्यात बहुभाग होगा, यानी मान लेते 10 समयों में कार्य हुआ, पहले से दूसरे में असंख्यात गुना दूसरे से तीसरे, तीसरे से होते ऐसे 90 तक चले जाओ, पहले से 90 तक सबकी टोटल है, उससे भी असंख्यात गुना दसवें का होगा लास्ट समय का, इसलिए असंख्यात बहुभाग का। देखो इसको हिंदी में पढ़ेंगे, जिस कर्म को उपशमाया जाता है उसे अंतर्मूर्त के द्वारा उपशमाता है, जिस कर्म का जो प्रदेश पुंज प्रथम समय में उपशमाया जाता है वह प्रदेश पुंज सबसे थोड़ा है, दूसरे समय में जो प्रदेश पुंज उपशमाया जाता है वह असंख्यात गुना है, इस प्रकार जाकर अंतिम समय में प्रदेश पुंज का असंख्यात बहुभाग उपशमाया जाता है। नपुसक वेद आदि जो अन्यतर विवक्षित कर्म संबंधी, अन्यतर यानी कोई भी, विवक्षित यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, विवक्षित कर्म संबंधी प्रदेश पुंज अंतर्मूर्त के द्वारा उपशमाया जाता है, उस उपशमाए जाने वाले प्रदेश पुंज की प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से उपशमना प्रवृत्त होती है, यह उक्त पूर्णी सूत्र का तात्पर्य है। एक शब्द डाला है उपशमाए जाने वाले प्रदेश पुंज, इसका अर्थ टोटल प्रदेश पुंज उपशमित हो गया ऐसा नहीं, कुछ तो संक्रमित भी हो गए, इसलिए सिद्ध हुआ कि द्विचरम समय से पूर्व के सब समयों में, ये बात सिद्ध हुई ना अभी जो मैंने 10 समय पर घटित की थी, द्विचरम से पूर्व के सब समयों में असंख्यात वा भाग प्रमाण प्रदेश पुंज उपशमाया जाता है और अंतिम समय में प्रदेश पुंज का असंख्यात बहुभाग उपशमाया जाता है। यानी हमने 10 समय ले लिया अंतर्मूर्त के, तो 10वें समय की बात बाजू रखो, पहले द्विचरम में 9वें समय से लेकर पहले समय तक जितना टोटल उपशमाया था उससे भी असंख्यात गुणा लास्ट समय में उपशमित एवं सर्व कर्माणम, इसी प्रकार सब कर्मों के विषय में जानना चाहिए। सब यानी यहाँ जो अधिकृत है वो उस कर्मों की, वो तो पहले उन्होंने बताया था ना, 21 प्रकृतियों की बात है चारित्र मुनि की। नपुसक वेद आदि सब कर्मों का यही क्रम है, अन्य प्रकार का नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है, उसका विशेषार्थ। यहाँ प्रथम गाथा के उत्तरार्ध की प्ररूपणा करते हुए चारित्रमों की 21 प्रकृतियों की किस क्रम से उपशमना होती है इसे स्पष्ट करते हुए, सर्वप्रथम सामान्य से सभी 21 प्रकृतियों की उपशमना पर विशेष प्रकाश डालते हुए बतलाया गया है कि जिस कर्म की उपशमना होती है उसमें अंतर्मूर्त काल लगता है। कौन सी कर्मों की होती है वो तो पहले गाथा में बता चुके हैं, अब यहाँ कितना भाग उपशमित होता है ऐसा पूछा था, तो पहले समय में थोड़ा, दूसरे समय असंख्यात गुना, तीसरे समय में असंख्यात गुना, और एक एक का जो एक हो या एक ग्रुप वाली प्रकृति है, यानी एक नपुंसक वेद हो या 6 नौकसाय, जो कुछ इसकी बात कर रहे हैं, तो उसको कितना काल लगेगा, तो अंतर्मूर्त तो लगेगा ही, उसमें भी प्रथम समय में सबसे कम प्रदेश पुंज की उपशमना होती है, आगे अंतर्मूर्त काल तक प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज की उपशमना होती जाती है, और इस प्रकार एक अंतर्मूर्त काल के भीतर तत्कर्म संबंधी पूरा प्रदेश पुंज उपशमित हो जाता है। उसके लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, जैसे वो पूरा ही उपशमित हो जाता है, यानी जो बचा है वो सारा अभी उपशमित हो चुका है। जो जीव क्रोधादि कषाय में से किसी एक कषाय और पुरुष वेद की अपेक्षा श्रेणी पर आरोहण करता है उसके सर्वप्रथम नपुसक वेद की उपशमना होती है, इसके बाद क्रम से स्त्री वेद आदि की उपशमना होती है, क्रम का निर्देश पहले ही कराए। अन्य वेदों के साथ क्या होता है वो बात बाद में बताएं। इस प्रकार उपशम को प्राप्त होने वाले प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा करके, श्रेणी प्ररूपणा ने हर समय जो कुछ बातें बनती है पंक्ति रूप से उसकी बातें की उन्होंने, अब उक्त कर्मों की
स्थिति उपशमना कैसे प्रवृत्त होती है? इस प्रकार इस बात का निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, कहते छिदियो उदयावलियम बंधावलियम च मुत्तुन शेषाओ सव्वाओ समय समय उसामिज्जन्ती। उदयावली और बंधावली को छोड़कर शेष सब स्थितियां प्रत्येक समय में उपशमित होती जाती है।
बंधावली में क्या नहीं होता,
यानी जिनका बंद होकर अभी एक अवली काल अभी पूरा नहीं हुआ है,
वो सभी
उन समय प्रबद्धों के सभी निषेकों को, उतने परमाणुओं को हम उतनी स्थितियां नहीं उपशमित कर सकते।
स्थितियां तो पहले से पड़ी है,
पहले से पड़ी है, परंतु ये नई बंधने वाले की अपेक्षा समय, उन स्थितियों में उतने परमाणु को अलग छोड़ दो, वो अभी उपशमित होने के लायक नहीं है क्योंकि उनकी बंधावली चल रही है।
नहीं, पर जो पहले से स्थिति थी, अच्छा अभी जो कम स्थिति बन गई,
हर समय में थोड़े थोड़े परमाणु हो रहे हैं, तो जो पहले से बंधी है
उसमें तो सभी निषेक में से थोड़े थोड़ा
थोड़े, क्योंकि सभी एक साथ पहले बंधी है, बंधावली हो चुकी है, फिर भी सभी परमाणु तो एक साथ नहीं उपशमित हो रहे हैं,
पर सभी स्थिति में से थोड़े थोड़े,
सभी स्थितियों में से उपशमने का कार्य चलेगा केवल उदयावली को छोड़कर। शंका, क्या अविशेष रूप से सभी स्थितियां उपशमित होती जाती हैं? ऊपर का मैंने पढ़ा क्या?
नहीं,
सभी कर्मों की सब स्थितियां, ये 16 पेज पर पहली लाइन से फिर पढ़ रहे हो, सभी कर्मों की सब स्थितियां प्रत्येक समय में उपशमित होती जाती है, ऐसा यहाँ चूर्णी सूत्र के पदों का संबंध करना चाहिए। इस पर शंकाकार पूछता है, क्या अविशेष रूप से, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं, सभी स्थितियां उपशमित होती जाती है? उसका समाधान नहीं, आगे उसे ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उदयावली और बंधावली को छोड़कर शेष सभी स्थितियां प्रत्येक समय में उपशमित होती जाती है, होती जाती है, यानी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है अंतर्मूर्त का। उदयावली में प्रविष्ट हुई स्थितियों की तो उपशमना होती नहीं, क्योंकि उदयावली में प्रविष्ट हुए कर्म के उदय को छोड़कर वहां उपशमादि क्रियाओं की प्रवृत्ति होने में विरोध है। इस वचन से जो सोदय प्रकृतियां हैं उनकी संपूर्ण प्रथम स्थिति की भी उपशमना नहीं होती, यह अर्थ भी सूचित किया गया जानना चाहिए, क्योंकि उसका नियम से उदयावली में प्रवेश होता है। क्या कहना चाहते हैं? पहले में पहले रूल क्या बताया, उदयावली में जो प्रविष्ट है उनकी उपशमना नहीं होती, तो आप पूछेंगे कि जब यहाँ अंतर किया गया था तो 21 प्रकृतियों में जो अंतर किया गया था तो उसमें जो अनुदय रूप प्रकृतियाँ थी उसके आवली मात्र निषेक रचना हुई थी, यानी उनकी आवली मात्र हुई थी, और जो उदय रूप है उसके अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति बनाई थी, और फिर उस पर इसकी भी और इसकी भी एक लेवल पर ही उसकी द्वितीय स्थिति होगी, ये डिफरेंस था। तो ये उदयावली में है तो इसकी तो उपशमने का कार्य नहीं चल, जैसे पुरुष वेद सही चल रहा है, ये पुरुष वेद का उदय है, उसकी ये पहली स्थिति है,
बाकी दो वेद
हम अन्य नहीं दिखा रहे, क्रोध उसको नहीं दिखा रहे, और ये नपुसक वेद का इतना बना है। अब नपुसक वेद की उपशमना कहाँ चलेगी?
द्वितीय
स्थिति में चलेगी, क्योंकि आवली में प्रवेश उसका तो उपशम होता नहीं, वो क्या होगा उसका, एक एक निषेक पुरुष वेद रूप से निकल जाएगा उदय, यानी वहाँ उसकी प्रथम स्थिति नहीं रहेगी,
तो कहेंगे पुरुषवेद की तो प्रथम स्थिति इतनी बड़ी है, उसका तो जब उसका नंबर आएगा तो यहाँ उपशमने का कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कहते प्रथम स्थिति में उपशमने का कार्य नहीं होता, क्योंकि पहली स्थिति सब उदय में आकर जाने वाली ही है नियम से, तो उपशमने का कार्य तो द्वितीय स्थिति में ही होता है। यही पूछ रहे, यहाँ बताया उन्होंने कि यह अर्थ भी सूचित किया जानना चाहिए। कौन सी? कि जो सोदय प्रकृति है, ये सोदय क्या कहते हैं? वैसे सुदय चाहिए था, ऊपर सोदय ही लिखा है क्या? सुदय लिखा है, सोदयानंद उदय सहित वाली, जिनका उदय चल रहा है वो सोदय भी चल रहे हैं, जिसका अंतर्मूल प्रमाण पहली स्थिति बनी थी। जैसे पुरुष वेद का उदय है
अंतर्मूल प्रमाण,
नपुंसक वेद का उदय नहीं है,
एक अवली प्रमाण,
तो पुरुष वेद की पहली स्थिति एक अंतर्मूल प्रमाण बनी, तो उसमें उपशमने का कार्य बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उसका नियम से उदयावली में प्रवेश होता है, इसलिए उदयावली के ग्रहण करने से ही उसका संग्रह हो जाता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। तथा जिन प्रकृतियों का बंध होता है उनकी बंधावली को छोड़कर, बंधावली व्यतीत होने के बाद समय प्रबद्धों की संपूर्ण स्थितियों को प्रत्येक समय में उपशमाता है। जितनी कुछ स्थिति बंदी होगी, अब मान लेते हैं पुरुष वेद का उदय चल रहा है, वहाँ पुरुष वेद का बंध भी है, तो यहाँ नया बंध भी किया उसने, तो जितने निषेक हुई वो सभी में से कुछ परमाणु उपशमित होंगे, होते चले जाएंगे अपने अपने बंधावली बीतने के बाद, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिन स्थितियों की बंधावली व्यतीत नहीं हुई है वे उपशामना करण आदि के अयोग्य है, आदि यानी उसमें बंधावली के काल में अन्य कोई करण वहां नहीं होते। विशेषार्थ, अंतर करने वाला जीव जिस कषाय और वेद का वेदन करता है, वेदन करता ने जिसका वो उदय वाला है, उसकी अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यतः यह प्रथम स्थिति क्रम से उदयावली में प्रवेश करती जाती है, एक एक समय बीत जाएगा तो वह पहली स्थिति घटती 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 उदयावली में प्रवेश करती जाती है, इसलिए उदयावली के साथ एक तो इन स्थितियों की उपशामना नहीं होती, और दूसरे प्रति समय जिन कर्मों का नया बंध होता है उनके उन समय प्रबद्धों की भी बंधावली काल के भीतर उपशामना नहीं होती। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये बात ख्याल में आई? बात मैंने आवली उदयावली वाले का तो वहाँ होती ही नहीं उपशामना, परंतु जिनकी प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण बनी है, जो उदय रूप होकर वहाँ चल रही है बात, उसके भी प्रथम स्थिति में उपशामना नहीं होगी। अब अनुभागोपशामना है। पहले तो हमने प्रदेश उपशामना देखी, पहले समय में थोड़े दूसरे समय असंख्यात बने असंख्यात बने असंख्यात बने, फिर स्थिति उपशामना देखी उदयावली को छोड़कर और बंधावली वाले इंशेकों को छोड़कर, बाकी सबकी उपशामना सभी स्थितियों में से होती। अब अनुभाग की बात करें, अब अनुभागोपशामना यहाँ कैसे प्रवृत्त होती है, ऐसी आशंका के दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अनुभागानं सव्वानि फड्डयानि सव्वाओ वग्गणाओ व सामिज्यन्ति। अनुभाग के सब स्पर्धक और सब वर्गणाएं उपशमाई जाती हैं। ये ख्याल में आती है? स्पर्धक रूप से वहां कोई उदय नहीं चलेगा, उसका उपशमने का कार्य चलता रहेगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो जो क्रोध को किस रूप से उपशमाया, तो स्पर्धक रूप से उपशमाया, मान को स्पर्धक रूप से, माया को स्पर्धक रूप से, तीन लोग को स्पर्धक रूप से, और थोड़ा है वो पुष्टि रूप हो गया। यहाँ कहते हैं 17 पेज पर,
क्योंकि सब स्थितियों में सब अनुभाग संबंधी स्पर्धकों और सब वर्गणाओं की उपशम क्रिया संभव प्रतीत होती है। ये क्या कहना चाहते थे? इस बारे में बहुत भ्रमणा चलती है। वो स्थितियों का और अनुभाग की रचना अलग अलग समझनी चाहिए। जब स्थिति की बात करते हैं तो ये वर्तमान समय से ऊपर हम स्थिति की, अभी यहाँ अंतर को छोड़ दो, हम अंतर की बात नहीं कर रहे, तो ये स्थिति को हमने क्रम से लिखा। अनुभागों को समझाना है तो अनुभाग तो स्पर्धकों में होते हैं, और एक एक स्पर्धक में अगर वर्गणा बतानी है तो ऐसे हम वर्गणा भी बता सकते हैं जो अनंत अनंत होगी। तो ये जरूरी नहीं कि ये नीचे के कम अनुभाग वाले यहाँ पर है और अधिक अनुभाग वाले ऊपर के स्थिति में, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो वाक्य पढ़ा, सब स्थितियों में यानी सभी निषेकों में सब अनुभाग संबंधी स्पर्धक और सब वर्गणाओं की उपशम क्रिया संभव प्रतीत होती है। वो वहाँ है इसलिए उसकी उपशम ना होगी कि नहीं होगी? आपने ये प्रश्न पहले भी पूछा था, क्या नीचे के निषेक में होते कि ऊपर भी होते? ये सर्वत्र होगी क्योंकि हम अनुभाग की बात कर रहे हैं, इसका भावार्थ। सब अनुभाग स्पर्धक और सब वर्गणाओं के मध्य, वहां एक एक स्पर्धक और एक एक वर्गणा के, यद्यपि एक एक परमाणु प्रदेश संबंधी अनुभाग को उपशमाता है, तो भी सभी स्पर्धकों और सभी वर्गणाओं को उपशमाता है।
एक एक परमाणु प्रदेश संबंधी अनुभाग को उपशमाता है,
मान लेते हैं। हमने पहले जब जब गणित पढ़ा था वर्ग वर्गणा स्पर्धक की, हमने मान लिया था पहले स्पर्धक की पहली जघन्य वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद 100 है, ऊपर 101 102, फिर 201 202, 301 302, अभी अनंत स्पर्धक हो गया। तो यहाँ कहते हैं सब अनुभाग स्पर्धक और सब वर्गणाओं के मध्य ने उनमें से सभी स्पर्धकों और सभी वर्गणाओं में से एक एक स्पर्धक के बदले प्रत्येक स्पर्धक और प्रत्येक वर्गणा के प्रत्येक परमाणु संबंधी अनुभाग को उपशमाता है।
प्रत्येक परमाणु संबंधी अनुभाग को पहले कम अनुभाग को उपशमाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, एक में तो एक ही अनुभाग है।
सभी स्थितियों में से प्रदेश निकालता है कि नहीं निकालता है?
हाँ।
वैसे अभी हमने ये स्पर्धक देखे, स्पर्धक तो वर्गणाओं से बनी है, वर्गणाओं में प्रदेश पुंज है। अभी ये जघन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा तक हम केवल यहाँ वर्गणा को बताया हमने, तो ये सभी वर्गणाओं के कुछ परमाणु लेंगे कि नहीं लेंगे? एक किसी एक वर्गणा के किसी एक वर्गणा में सभी अविभाग प्रतिच्छेद समान परमाणु होने वाले, यानी 100 वाले अनेक परमाणु है, 101 वाले अनेक है, 102 वाले अनेक है, 103 वाले अनेक है। तो जो 101 वाली वर्गणा है उसमें से कुछ प्रदेशों का उपशम होगा कि नहीं होगा?
नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक परमाणु प्रदेश संबंधी अनुभाग को उपशमाता है। एक एक परमाणु का प्रत्येक परमाणु में से कुछ अनुभाग को उपशमाता है।
देखो, सदृश घन वाले परमाणुओं की अपेक्षा फिर भी कारण है कि प्रथम समय में सदृश घन वाली वर्गणाओं के असंख्यातवे भाग को ही उपशमाता है। एक वर्गणा में जितने परमाणु है
उसके
असंख्यातवे भाग को उपशमाया है, यानी प्रत्येक अनुभाग वाले थोड़े थोड़े अपने अपने रूप से उपशमित हो गए। उपशमाता है का अर्थ क्या है?
हो जाता
वो
है,
उसका उदय रूप नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, संक्रमण कुछ नहीं होगा, अपने रूप से रहेंगे। सदृश जने ने समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु, सदृश जन हर एक की वैल्यू समान है, हर एक के अविभाग प्रतिच्छेद समान है।
तो बताए ना,
प्रथम स्थिति में
वो तो उदय में,
प्रथम स्थिति की बात नहीं, वहाँ जो कुछ अनुभाग घटकर उदय में आने वो बात अलग। उपशमित नहीं, उपशम यानी अपने रूप से पड़े रहने, उदय में ये तो नीचे आ रहे हैं ना, प्रथम हाँ द्वितीय स्थिति में ही होगा। स्थिति का उपशम हो, अनुभाग का उपशम हो, प्रदेशों का उपशम हो,
तो प्रदेशों को हम एक बार स्थिति की अपेक्षा विचार कर सकते हैं और यहाँ वर्गणाओं की अपेक्षा विचार करते हैं। प्रत्येक वर्गणा में अनेक अनंत परमाणु है, उसका असंख्यात भाग पहले समय में उपशमित हुआ है, यह अनुभाग की अपेक्षा उपशम कहलाएगा। और यहाँ हम निषेकों की स्थिति की अपेक्षा उपशम कहलाएगा। स्थिति की अपेक्षा उपशम होने वो अपनी स्थिति छोड़कर नीचे नहीं आएंगे, अनुभाग की अपेक्षा उपशम होने अपने अनुभाग रूप से वो परमाणु रहेंगे, उदय में नहीं आएंगे, यानी वहाँ उसका अनुभाग कुछ चेंज नहीं होगा, विशेष उस रूप से उसका उपशम हुआ। हाँ, एक परमाणु इज एक वर्ग। उपशमन का अर्थ उसका हमने संक्रमण नहीं कहा अनुभाग का, अनुभाग घटाने को अपकर्षण कहेंगे, यहाँ हम उपशम की बात कर रहे हैं। हाँ, मान लेते 1000 परमाणु 100 अनुभाग वाले हैं, उसमें से मान लेते कि 200 कहो या 50 परमाणु उन्होंने पहले समय में उपशमित किए अनुभाग की अपेक्षा।
इसलिए मैंने पूछा था,
यानी आप कम करना कहते हैं वो कम करने को अपकर्षण कहेंगे, यहाँ उपशम की बात
है,
अनुभाग के अपकर्षण की बात यहाँ नहीं हो रही है। साइमल्टेनियसली कुछ परमाणुओं में होगी वो बात अपने यहाँ विषय नहीं है, अपना विषय उपशम का चल रहा है।
नहीं, मैं क्या समझा कि पर्टिकुलर विषय के साथ पर्टिकुलर अनुभाग का ही उपशम होगा, बाकी विशुद्धि बढ़ेगी तो दूसरे समय में विशुद्धि जितनी बढ़ी उतने अनुभाग का तभी उपशम होगा, इसे मैं समझ रहा था, इसीलिए मैं इसका समझा। इसलिए मैंने
विशुद्धि बढ़ने से विशिष्ट प्रकृति का अनुभाग कम ज्यादा, प्रकृति में चेंजेस हो गए। विशुद्धि पहले नपुंसक वेद के हुए, फिर स्त्री वेद के हुए, उसमें वो क्या स्थिति में ऐसा होता है कि ऊपर की स्थिति पहले उपशमित होती है नीचे की बाद में?
सभी स्थिति है,
प्रत्येक स्थिति में से कुछ परमाणु उपशमित होते हैं स्थिति की अपेक्षा। अब अनुभाग की अपेक्षा ऐसा ही विचार करो, प्रत्येक वर्गणा में से कुछ कुछ परमाणु जो समान सदृश धन वाले हैं
पूरे उपशमित हो गए,
वो उपशमित हो गए, दूसरे समय में और ज्यादा, तीसरे समय में और ज्यादा। भावार्थ के विशेषार्थ कहाँ भावार्थ है?
नहीं, विशेषार्थ है ना, नीचे पड़ेगी,
हम अभी नीचे आए ही नहीं है। अच्छा, ऊपर का भावार्थ, हाँ वहां से पढ़ेंगे, सेकंड लाइन से। यहाँ तो पहले बताया था कि अनुभाग के सभी स्पर्धक और सभी वर्गणाएं उपशमाई जाती है, क्योंकि सब स्थितियों में सब अनुभाग संबंधी स्पर्धकों और सब वर्गणाओं की उपशम क्रिया संभव प्रतीत होती है, यानी प्रत्येक निषेक में अनुभाग के जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी वर्गणाएं प्राप्त है। जो हम बार बार बताते हैं सबको कि यहाँ अनुभाग की अपेक्षा रचना करनी है तो इसमें सभी प्रकार की वर्गणाएं पाई जाएगी, तो क्या उसमें से अधिक अनुभाग वाला उपशमित होगा और कम वाला का? ऐसा नहीं, प्रत्येक अनुभाग वाले में से कुछ परमाणु उपशमित होंगे।
मेरे तो क्यों बताया यहाँ पे, इसलिए यद्यपि एक एक परमाणु प्रदेश,
अभी वहाँ नहीं आए हम, अभी अभी पढ़ रहे फिर भावार्थ। सब अनुभाग स्पर्धक और सब वर्गणाओं के मध्य यानी उनमें से वहाँ एक एक स्पर्धक और एक एक वर्गणा के यद्यपि एक एक परमाणु प्रदेश संबंधी अनुभाग को उपशमाता है,
क्योंकि ऐसा लिखा है ना, एक एक परमाणु प्रदेश संबंधी अनुभव को उपशमाता, इसीलिए मैंने पूछा। तो प्रत्येक परमाणु संबंधी ऐसा नहीं लेना है ना,
परमाणु को उपशमाता है, इसका अर्थ यहाँ हम क्या ले रहे हैं?
अनुभव को,
अनुभव को उपशमा है, क्योंकि अनुभव की बात चल रही थी, जब स्थिति की बात चल रही थी तो हम कहेंगे प्रदेशों का उपशम हो रहा है, किस अपेक्षा? स्थिति की अपेक्षा। ख्याल में बस, कितने कितनों का उपशमाता है तो हम प्रदेशों की संख्या बताएंगे, स्थितियों सभी स्थितियों में से एक्सेप्ट उदयावली को छोड़ा था, बंदावली को छोड़ा था। अब यहाँ सभी सर्वस्पर्धक, सभी वर्गणा और सभी परमाणुओं के जो, तो कितनों का उपशमाता है? कुछ परमाणु लेंगे, एक वर्गणा में तो अनंत प्रदेश है, उसमें से कुछ प्रदेशों को, क्यों? क्योंकि सभी में समान अनुभाग है, उसका अनुभव कम करना ऐसा अगर आप कहेंगे तो उसको तो अपकर्षण कहलाएगा।
नहीं कम नहीं है, विशिष्ट अनुभव को पहले उपशम हुआ।
अभी सभी स्पर्धक सभी वर्गना और सभी परमाणु ले लिया, अभी किसका विशिष्ट लेना है? उत्कृष्ट अनुभाग से जघन्य अनुभाग वाले सभी परमाणुओं को उपशमाता है प्रत्येक समय, ख्याल में है ना? और ये सभी निषेकों में पड़े,
सभी निषेक में सभी स्पर्धक पड़े।
तो जब हम कहेंगे स्थिति की अपेक्षा, जब हम कहेंगे कि इनमें से कुछ परमाणुओं को उपशमाया, अब एक विशिष्ट निषेक की बात करिए कहीं का भी ले लो, तो वहाँ जितने समय पहले समय में जितने परमाणु को उपशमित किया है स्थिति की अपेक्षा, उसमें सभी स्पर्धक सभी वर्गना सभी वो यहाँ पाए जाएंगे, अनुभाग की अपेक्षा उन सभी को उपशमाया। नहीं
सभी में उत्कृष्ट अनुभाग होता है,
सभी में उत्कृष्ट जैसे जघन्यतम अनुभाग पहले हम ऐसा ही सीखते थे और सिखाते थे।
बिस्वे हमने देखा था ना कि सभी स्थिति में,
ये अभी पहली लाइन में क्या लिया, क्योंकि ऐसा हमको वो अलग अपेक्षा से बात की थी। यहाँ जो ऊपर के जो है वो उत्कृष्ट वाले हैं अनुभाग की अपेक्षा, सभी निषेकों में सभी आते हैं। पहले हमने एक बार पढ़ा था परंतु उसका कुछ अर्थ अलग निकाल, अभी उसकी वो कथन निकाल के फिर देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लास्ट में आने वाले सब अधिक अनुभाग वाले ऐसे हो गए ना। नहीं ऐसा नहीं है, सब स्थितियों में सब अनुभाग वाले लिए यहाँ पर ले ना, ये वाक्य महत्व का है यहाँ पर बहुत। क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानेंगे यानी सभी निषेकों में सभी अनुभाग वाले स्पर्धक होते हैं, देखो ये हम सभी स्पर्धकों को और सभी वर्धनाओं को उपशमाता ऐसा कहा जाता है, सदृश धन वाले मिला पांचवी लाइन, सदृश धन वाले यानी जिनमें जिनमें अभिभाग प्रतिच्छेदों की समानता है उसको सदृश धन कहते हैं। सदृश धन वाले परमाणुओं की अपेक्षा फिर भी कारण है कि प्रथम समय में सदृश धन वाली वर्गणाओं के असंख्यात भाग को ही उपशमाता है। सदृश धन वाली वर्गणा कहलाती ना जिसमें जिसमें मान लेते हैं 100-100 अभिभाग प्रतिच्छेद है, तो एक वर्गणा में ऐसे अनंत परमाणु है तो उसमें से असंख्यात भाग को ही उपशमाता है। इसलिए सभी स्पर्धक और सभी वर्गणाएं प्रत्येक समय में उपशमाई जाती है, क्योंकि एवरी वर्गणा के कुछ प्रदेशों का उपशम पाया जाता है, तो सभी स्पर्धकों के सभी वर्गणाएं उपशमाई ऐसा कहें, तो सभी उपशमाई ने सभी के परमाणु सभी परमाणु ने उपशमाए
पार्ट ऑफ दी
वर्ग, जैसे सभी स्थितियों में से उपशम होता है तो सभी स्थितियों में से कुछ परमाणुओं का उपशम होता है, ऐसे सभी वर्गणाएं हमने अनंत वर्गणा एक के ऊपर एक लिखी तो सभी वर्गणाओं में से कुछ परमाणुओं का उपशम होगा। ऐसा नहीं कि नीचे का ही उपशम होगा ऊपर का नहीं होगा या ऊपर का होगा नीचे का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप जैसे कहेंगे अधिक अनुभाग वाले पहले उपशमित हो गए बाद में कम अनुभाग वाले उपशम, ऐसा नहीं है। ये स्पर्धक बताए थे और उसी को हमने वर्गणा के रूप में करके उसके बाजू में बगल में बताया, क्योंकि एक एक स्पर्धक में बहुत अनंत अनंत वर्गणाएं हैं। ये वर्गणाएं क्यों लिखी यहाँ, क्योंकि प्रदेशों की अपेक्षा उसको बताना था इसलिए। परंतु एक एक वर्गणा में सदृश धन वाले परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे 100, 101, 102, 103 इस तरह से, उसी का तो हमने एक स्पर्धक बनाया, 201, 202, 203, 204 उसका दूसरा स्पर्धक बनाया, सभी वर्गणाओं को एक के ऊपर एक लिखा, तो अभी जितने अविभाग प्रतिच्छेद वाले अलग अलग परमाणुओं के जितने पॉसिबिलिटीज है
सभी में,
सभी में से उपशम होगा
कुछ परमाणु का उपशम,
कुछ परमाणु इन सभी की बात। ये निषेक रचना स्थिति के ये
वाली,
ये ऐसा करेंगे तो इसमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी वर्गणाएं पाई जाएंगी। हाँ ऐसा सभी में होगा, नहीं अभी सभी
सभी
सभी, सभी सत्ता वाले सभी परमाणु ले लेंगे। हाँ उपशमय जाते हैं कहाँ मिला, तीन पीछे सात लाइन। यहाँ पर बंधावली और उदयावली को छोड़कर ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखो क्योंकि सभी स्थिति विशेषों में सभी स्पर्धक और वर्गणाएं संभव है। ये कितना कितना क्लियर दिया है, सभी स्थिति विशेषों में ने सभी निषेकों में सभी स्पर्धक और सभी वर्गणाएं संभव है। हाँ ये बात अपनी चली थी अभी हमारी चर्चा, हमें सत्य असत्य का निर्णय हम कैसा करेंगे, आप कहते इसलिए हम सत्य मानेंगे क्या, कहीं तो आगम भरा पड़ा है इसलिए। लब्धि सार में से बताएं कहीं कितनी जगह, और यहाँ तो कितने स्पष्ट बताए, यानी जो बातें पहले से मुझे ऐसे लगती थी इतना स्पष्ट रूप से कहीं लिखा तो नहीं पाया जाता, परंतु ये बात मैंने पहले भी बताई थी बहुत बार कि जो हम अनुभव की ऐसी रचना देखते हैं वो हर निषेक में हमको देखने के मिले, यानी प्रत्येक स्थिति में जो अनंत परमाणु है उसमें अनुभव की रचना बनेगी जघन्य से उत्कृष्ट तक। किस रूप से उदय में आता है वो बात अलग है, उनमें से किस रूप से उदय में आता है, यानी ये भी मैंने निमित्त उपादान में बताया कि वर्तमान के निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट अनुभाग तक सभी स्पर्धक पड़े हैं, उस समय जीव कैसा भाव करता है उसको कहेंगे उसका उदय चल रहा है, उसके कारण वो अब नहीं मानो आप
निमित्त निमित्त।
हाँ निमित्त निमित्त लगाओ आप, तो सभी इतने सारे स्पर्धक पड़े हुए होते हुए भी उस समय किस रूप से उदय चलेगा, हमने देखा था ना वो कृष्ण में देखा था मध्यम रूप से होकर, तो उदय किस रूप से होकर उदय में आता है तो कहेंगे वैसे जीव के परिणाम होते हैं या जीव के परिणाम के अनुसार उस रूप से वहां उदय चलेगा।
पर जो शुक्ल निश्चय वाला जो परिणाम बनता है उसके जो स्पर्धक बनेंगे उसमें उत्कृष्ट अनुभाग वाले भी होंगे और मिनिमम अनुभाग वाले भी।
अभी वो कौन सी प्रकृति बनती है उस समय कौन सी बनती है वो बात अलग है, सत्ता में किस रूप से पड़ी है वो बात अलग है। अभी शुक्ल ऐसा कर रहा है, अभी कोई विशिष्ट प्रकृतियां बन देगा, अभी वो जो कुछ बांधेगा, मान लेते हैं अभी ज्ञानावरण का कम अनुभाग बांधेगा, तो बांधेगा तो जैसे हम ये निषेक रचना पड़ी है और वर्तमान में कम स्थिति बांधेगा तो पूर्व निषेकों में जाए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी कम अनुभाग बांधा तो पूर्व स्पर्धकों में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर वहाँ सत्ता में जो पड़ा है वो तो पड़ा ही रहेगा। तो सत्ता का अनुभव यदि घटाएगा तो वो घट जाएगा, देखो क्योंकि
तो यहाँ पे जो हमने अधिवृत्तिकरण में जो समान परिणाम होता है और सत्ता में भी जो समान स्थिति और अनुभव रह जाता है तो उसके पहले जो अनुभव रहता था उसमें कुछ बढ़ोतरी कटौती,
देखो वहाँ अनुभव कांडघात स्थिति कांडघात हुए है, सत्ता में भी वेरिएशन हुआ है।
वहाँ के पहले की बात
पूछ रहा हूँ, पहले संसार अवस्था में तो अलग अलग वेरिएशन होते हैं परिणामों के निमित्त से, कभी अनुभव तीव्र मंद होता है परंतु जब सत्ता का अनुभव तो बना रहता है, जब तक कांडक घात नहीं होते है फिर बंध के बाद भी अनंत गुणाहीन होकर ही उदय में आता है, जिस रूप से बंधा है उस रूप से उदय तो होता ही नहीं है कभी। ये देखो यहाँ क्या कहा, नीचे से उसकी पैराग्राफ की चौथी लाइन, यहाँ पर बंधावली और उदयावली को छोड़कर ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उदयावली को छोड़कर कैसा कहेंगे, उदय रूप निषेक में भी जघन्य से उत्कृष्ट तक तो सभी अनुभाग पड़े हैं, क्योंकि सभी स्थिति विशेषों में सभी स्पर्धक और वर्गणाएं संभव है, इसलिए उक्त प्रकार के वचन विशेष का कोई फल विशेष नहीं पाया जाता। ऐसा कहने का कोई प्रयोजन ही बाकी नहीं रहता। वहाँ तो हम उदयावली कहते हैं क्योंकि उदयावली में से उसका स्थिति में से उपशम होना संभव नहीं, क्योंकि वो उदय रूप होकर फिर जाने वाला है। इसलिए उक्त ये हो गया। इस प्रकार कदि भागम उवसामि यदि इस पद का स्थिति अनुभागे पदेशज्ञ, स्थिति में अनुभाग में और पदेशाग्र में इस पद के साथ संबंध करके अर्थ की प्ररूपणा की, यानी प्रदेशों का उपशम, स्थिति का उपशम और अनुभाग का उपशम। विशेषार्थ, यहाँ प्रत्येक समय में कितने अनुभाग को उपशमाता है इसका विचार करते हुए बतलाया है, जितने भी स्थितियों के भेद है उन सब में सदृश धन वाली वर्गणाएं होती हैं, इसलिए यहाँ यानी सदृश धन वाली वर्गणाएं होती है, यानी सभी वर्गणाएं होती है ऐसा कहना चाहिए, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की सभी वर्गणाएं होती हैं, इसलिए यहाँ बंधावली और उदयावली को छोड़कर ऐसा कहने का प्रयोजन नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में सदृश धन वाली वर्गणाओं के असंख्यात विभाग को उपशमाता ऐसा होने से अनुभाग संबंधी सभी स्पर्धकों और सभी वर्गणाओं को उपशमाता है यह कथन बन जाता है। सभी स्पर्धकों को वर्गणाओं को उपशमाता है, ऐसा अर्थ एक एक वर्गणा में अनंत एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणा है, प्रत्येक वर्गणा के कुछ प्रदेशों को उपशमाता है, इसका अर्थ है सभी टाइप के अनुभागों को उपशमाता है, वो भी जो कुछ श्रेणी रूप से उसका उपशम चलेगा। अब संकमम उदीर्णा च कदि भागो, गाथा सूत्र के इस अवयव संबंधी गाथा सूत्र से सूचित अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हैं, वह जैसे अबध्यमान प्रकृतियों का प्रदेश संक्रम प्रत्येक समय में श्रेणी रूप से असंख्यात गुना जानना चाहिए, क्योंकि श्रेणी को छोड़कर नीचे सर्वत्र अबध्यमान अप्रशस्त प्रकृतियों का विध्यात संक्रम होता है, परंतु श्रेणी में गुण संक्रम होता है, नहीं बंधने वाले प्रकृतियों का वहां बंधने वाली प्रकृतियों में संक्रमण होता है। तो यहाँ तो श्रेणी की बात है, तो श्रेणी में क्या होता है, जैसे अभी नपुंसक वेद की बात कर रहे थे, नपुंसक वेद के परमाणुओं का द्वितीय स्थिति का उपशम चल रहा है, उसी समय में वहां बंधने वाली पुरुष वेद में भी संक्रमण हो रहा है, तो किस रूप से संक्रमण हो रहा है, तो कहते वो गुणित क्रम से होगा, उसके पहले क्या हो रहा था, विद्या संक्रमण हो रहा है, हाँ नॉर्मल कंडीशन, जब श्रेणी में नहीं था। बध्यमान प्रकृतियां जब तक गुण संक्रम को नहीं प्राप्त होती तब तक उनका प्रदेश पुंज अध प्रवृत्त संक्रम के द्वारा प्रत्येक समय में विशेष अधिक रूप से संक्रमित होता है, वहां श्रेणी रूप से संक्रमण नहीं होगा गुण श्रेणी रूप से, ये कुछ अलग बात थी। पहले में पहले नहीं बंधने वाली प्रकृतियों का संक्रमण होता है तो गुण संक्रमण रूप से होता है, श्रेणी की बात करें उसके पहले क्या हो रहा था, विद्या संक्रमण हो रहा था, बंधने वाली प्रकृतियों का क्या होगा, जैसे पुरुष वेद का बंध है, पुरुष वेद का उदय है, पुरुष वेद के संक्रमण चल रहे हैं, उसका उपशम का संक्रमण का कार्य चल रहा है, तब क्या होगा, उसका संक्रमण कैसा होगा, तो कहते बध्यमान प्रकृतियां जब तक गुण संक्रम को नहीं प्राप्त होगी, इनके गुण संक्रम को प्राप्त होने के पहले कौन सा चलेगा, अध प्रवृत्त संक्रम, नहीं बंधने वाली जब गुण संक्रम को प्राप्त होती उसके पहले विद्या संक्रमण चल रहा था, और बद्यमान जब तक गुण संक्रमण को नहीं प्राप्त होती तब तक उसके पहले अदा प्रवृत्त संक्रमण हो रहा था, जो प्रति समय विशेष अधिक हो रहा। गुण संक्रम के पहले पूर्व की काल की बात, अब इसका स्पष्टीकरण हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकानु सोवाणी मस्तक नमो सदा नेत हो। दोषी सर
I don't know why I don't know what I'm doing.